जैन के कमरे में आरोही अभी भी उसके पास थी। कुछ देर उसके पास रहने के बाद उसने जैन से कहा, जैन, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। हाँ, पर मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जैन बोला। बाद में, आरोही, प्रियल, चलो निकल जाओ, 11 बज रहे हैं, जाकर सो जाओ दोनों। प्रियल और आरोही भी वहीं थे। निक के स्पेशल ग्रांट की वजह से वे दोनों जब तक चाहें तब तक वहां रुक सकते थे। आरोही ने छेड़ते हुए कहा, देखो तो कितनी जल्दी है इसे हमें निकालने की, चल प्रियल, चलते हैं। प्रियल और आरोही मुंह बनाते हुए वहां से निकल गईं। आरोही बाहर आकर बोली, मज़ा आ गया आज तो, हम कल से यहाँ इंस्टीट्यूट में हैं। फिर उसने प्रियल से पूछा, तुम ठीक तो हो ना प्रियल? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा मूड नहीं ठीक है, अभी सोने का प्लान भी नहीं। तो क्या करने का इरादा है? देख मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तो तुम सो जाओ ना, मैं तो इंस्टीट्यूट के व्हीकल एरिया से स्कूटी राइड पर लूंगी, आज ही पता चला हम ऐसा कर सकते हैं। और आरोही उसकी तरफ देखने लगी। और गाड़ियां लाएंगे, प्रियल इतना कहकर बच्चों की तरह उछलने लगी। निक के साथ उसने इतना अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड किया था कि अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आरोही उसे और भी अजीब तरीके से देखने लगी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है? चल यार मैं ठीक हूँ, प्रियल बोली और फिर उस तरफ चली गई जहां उसे स्कूटी लेनी थी। आरोही जाती हुई प्रियल को पीछे से बोली, ओके, अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। हाँ हाँ, प्रियल ने इसका जवाब दे दिया। प्रियल ने स्कूटी ली और फिर इंस्टीट्यूट से बाहर आकर निक के होटल की ओर जाने लगी। निक का होटल ज्यादा दूर नहीं था और बीच में ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं थी। उसे स्कूटी भी अच्छे से चलाना आती थी और होटल का रास्ता उसने मैप पर देख लिया था। निक के होटल की ओर जाते हुए उसने अपने मन में कहा, प्रियल, लगता है तू पूरी तरह से पागल हो गई है। निक अगर इंस्टीट्यूट में नहीं है तो तू उसके होटल जाने की क्यों सोच रही है? पागल, एक अनजान शहर में इस तरह से घूमना ठीक नहीं रहता। उसने खुद को ही हिदायत दी मगर इसके बावजूद होटल जाने से पीछे नहीं मुड़ी। वो होटल पहुंची और उसके सामने स्कूटी रोककर उसे देखने लगी। निक के होटल के सामने प्रियल ने होटल को देखते हुए कहा, कितना शानदार है ये, काफ़ी बड़ा और रईस लोगों के लिए लग रहा है। मैं तो यहाँ का एक डिनर तक अफोर्ड नहीं कर सकती। डिनर न सही, आइसक्रीम तो ले लेते हैं। चल प्रियल, आज तो खुद को आइसक्रीम की ट्रीट देते हैं, प्रियल ने कहा और स्कूटी से उतरकर होटल के अंदर आइसक्रीम खाने के लिए चली गई। निक और उसके दोस्तों ने खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद निक ने जीनू और एवा को आवाज़ लगाई, जो वीडियो देखने गई हुई थी। जीनू, एवा, आ जाओ बाहर, हमारी बातें हो गई हैं। जीनू और एवा हंसते हुए बाहर आई। निक ने उन दोनों को देखते हुए कहा, क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को, ऐसा क्या देख लिया अंदर जाकर? जीनू कंधे उचकाते हुए बोली, क्यों बताएं, और उसके सामने से निकल गई। निक ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर ताली बजाकर अपना ध्यान बाकी लोगों की तरफ कर लिया। उसने बाकी लोगों को कहा, अच्छा गाइज, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा, कोई पिएगा? सारे एक साथ हाथ ऊपर कर दिए। निक आंख खिमाता हुआ बोला, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी एवा वापस आई और बोली, हम इसीलिए तो हंस रहे थे, अभी वीडियो में देखा एली को कॉफ़ी कितनी नापसंद थी, जबकि निक को कॉफ़ी बहुत पसंद थी, मगर उसके सर पर एली का ऐसा असर चढ़ा कि निक ने उसके लिए कॉफ़ी पीना छोड़ दिया। निक ने हल्की ब्लशिंग करते हुए कहा, एली को दिल से नापसंद थी कॉफ़ी। जीनू भी इस बारे में कहते हुए बोली, एली को तो कॉफ़ी की स्मेल से ही उल्टियाँ होने लगती थी, हमें इस बारे में पता नहीं था, इस वजह से कई बार हम उसके पास कॉफ़ी लेकर गए और उसे हर बार उल्टी आ जाती थी। निक कॉफ़ी के लिए किचन में गया और दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध रखने के बाद उसने कॉफ़ी का डिब्बा उठाया तो देखा वह खाली था। ओ गॉड, ये कॉफ़ी भी अभी ख़त्म हो गई। जीनू, एक काम कर, होटल से ले आ, उसने जीनू को कॉफ़ी लाने के लिए कहा। ओके, बट बनाएगा तू ही, तेरी कॉफ़ी वर्ल्ड क्लास होती है, जीनू बोली और कॉफ़ी लेने के लिए चली। वो नीचे पहुंची तो उसे सबसे पहले प्रियल ही दिखी। प्रियल को देखकर उसे हैरानी हुई। वो उसके पास पहुंची। हेलो प्रियल, कैसी हो तुम, ये कहकर उसने पूछा। इतनी रात को यहाँ, 1 बजने वाले हैं, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं स्कूटी राइड पर घूमने आ गई थी, फिर भूख लगी तो आइसक्रीम लेने के लिए चली आई, बाकी होटल को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं थी तो मैं यहाँ आ गई, उसने जो सही लगा वो बता दिया। फिर उसने जीनू से पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो, हम निक के कमरे पर थे, चल तू ही आना, जीनू ने प्रियल को भी आने के लिए कह दिया। प्रियल बोली, पर मैं कैसे? उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। निक से मिलने में उसे किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होती थी, मगर अभी के टाइम में उसने मिलने के बारे में सोचा नहीं था, ये उसकी इमेजिनेशन से बाहर था, तो उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। जीनू ने कहा, अरे चलना, और कहकर वो उसे ले गई। जीनू प्रियल को लेकर ऊपर आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला और बंद हुआ, निक ने पूछा, जीनू, ले आई कॉफ़ी? तभी उसकी नज़र प्रियल पर गई। प्रियल, क्षमा, तुम यहाँ, टाइम देखा है, क्या हो रहा है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे, वो प्रियल होटल आई थी तो मुझे दिख गई और मैं इसे यहाँ ले आई, इससे पहले प्रियल कुछ कहती, जीनू बोल गई। ऑफ कोर्स चीनू, निक उसकी तरफ हुआ। मुझे तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीदें थी। तुम डिनर से पहले ही कह रही थी प्रियल यहाँ होती तो अच्छा होता, और अब इसे बुला भी लिया। निक को यही लगा कि चीनू उसे यहाँ लेकर आई है। फिर उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों जितना मैं इससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतनी ही ये मेरे करीब आती जाती है। इस चीनू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे, बंदे को चैन से जीने भी नहीं देती। चीनू ने पहले सोचा असली बात बता दूं, मगर फिर सोचा क्या फर्क पड़ता है और बोली, निक अपनी बड़बड़ बंद करेगा तुम, एवा ये देखो ये है प्रियल, और प्रियल ये एवा है, एमा की छोटी बहन। एवा ने कहा, हेलो प्रियल, नाइस टू मीट यू अगेन। पिछली बार जब हम मिले थे तो हालात ही ऐसे थे कि एक दूसरे का इंट्रो ही नहीं हुआ था। प्रियल बोली, हेलो। बाकी का उसे समझ नहीं आया क्या बोले। वहीं निक ने नाराज होने वाला मुंह बनाया, अब मुझे इसके लिए कॉफी बनानी पड़ेगी, और कहकर कॉफी बनाने के लिए चला गया। अंदर जाकर निक बड़बड़ाते हुए कॉफी बीट कर रहा था। जैसे ही उसने कॉफी मग में दूध के साथ कॉफी डाली, दूध के अंदर कॉफी मिलकर उसकी खुशबू फैलने लगी, और उसी के साथ प्रियल को उल्टी आने लगी। निक ने बाहर की तरफ देखा, अब इसे क्या हुआ, जरूर ऐसा वैसा कुछ खा लिया होगा। वहीं एवा ये देखकर हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है, इसे भी एली की तरह कॉफी की स्मेल से एलर्जी और उसे उल्टियां हो रही हों। निक बाहर आया और प्रियल को उल्टी करते हुए देखा, वो हॉल में बने वॉशरूम में उल्टी कर रही थी। निक पहले तो उसे देखता रहा, फिर बात को टालता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। चीनू ने भी हाँ में सिर हिलाया, और फिर मैं देखती हूँ बोलकर प्रियल को देखने लगी। चीनू ने प्रियल को संभाला और फिर एक जगह बिठाकर उससे पूछा, प्रियल तुम ठीक तो हो ना, क्या खाया था तुमने। निक ने अंदर जाकर चिमनी चालू की जिससे हवा बाहर निकलने लगी, और फिर बाहर आकर बोला, जरूर स्ट्रीट फूड खाया होगा या कुछ और ऐसा वैसा खा लिया होगा जिसकी वजह से उल्टियां हो रही होंगी। नहीं, वो मुझे कॉफी की स्मेल से ही वॉमिटिंग होने लगती है, प्रियल ने बताया, मुझे कॉफी से एलर्जी है। चीनू और निक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रियल को फिर से वॉमिटिंग होने लगी, वो बाथरूम की ओर चली गई।
निक पहले तो इधर उधर देखता रहा, फिर उसने गुस्से से चीनू को डांटते हुए कहा, क्या जरूरत है इसे यहाँ लाने की, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, ले आई तो ले आई, आखिर क्या हो गया है तुम्हें। कुछ नहीं हुआ, बस मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, निक ने, और फिर वहां से चला गया। प्रियल ने उसकी ये बात बाथरूम में ही सुन ली थी। प्रियल बाहर आई और चीनू से बोली, मुझे यहाँ से जाना चाहिए चीनू, वैसे भी ठीक हूँ मैं अब। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ी। चीनू आगे आई और उसका हाथ पकड़ा, पर तुम ऐसे कैसे जाओगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, चल मैं छोड़कर आती हूँ तुम्हें। नहीं, मेरे पास स्कूटी है, मैं उससे चली जाऊंगी, एंड डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, प्रियल ने कहा और हाथ छुड़ाकर बाहर की ओर भाग गई। प्रियल मेरी बात तो सुन, चीनू पीछे से चिल्लाई, मगर तब तक वो भाग गई थी। प्रियल लिफ्ट में पहुंची और उसके अंदर जाकर रोने लगी। चीनू गुस्से में निक के पास गई और जाकर उसे कहा, अब तो सुकून मिल गया तुम्हें, गई वो यहाँ से, कुछ सोच समझ कर तो बोला करो यार, तबीयत खराब थी उसकी, मगर फिर भी तुम उसके ऊपर चढ़ गए, अब अकेली गई है, रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, मैं तो लेकर नहीं आया था उसे। मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो फाइनली एली की जगह ले रही है और तुम्हें इससे दिक्कत हो रही है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम कुछ भी कहो, मुझे नहीं कहना कुछ भी। निक कसम से वो यार, चीनू का मन कर रहा था वो निक को बता दे प्रियल उससे प्यार करती है, यार वो बहुत केयर करती है तेरी, जानता हूँ, मगर इतना कहते ही निक के आगे प्रियल का चेहरा घूमने लगा। पर मैं उससे इस बात से लेकर नाराज नहीं हूँ कि वो एली की जगह ले रही है, मैं उससे इसीलिए खफा हूँ क्योंकि रात उसने मुझे आई लव यू बोला और सुबह होते ही वो भूल गई। क्या? अचानक चीनू ने निक को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, तुम इसीलिए मुंह फुलाकर बैठे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चीनू का अब हंसने को मन कर रहा था। मैं क्या करूं यार, मैं ऐसा ही हूँ, निक बोला और फिर खड़ा हो गया। छोड़, प्रियल पता नहीं किस हालत में होगी, मैं जाकर उसे संभालता हूँ, इतना कहकर वो बाहर की तरफ भाग गया। चीनू ने उसके जाने के बाद अपना माथा पीटा और कहा, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। प्रियल ने थोड़ी तेज स्कूटी चलाई, इस वजह से वो निक के पकड़ पाने से पहले ही इंस्टीट्यूट पहुंच गई थी। इंस्टीट्यूट आने के बाद उसने स्कूटी जमा करवाई और फिर अपने उस कमरे में चली गई जो यहाँ रहने के लिए चैन ने दिया था। कमरे में जाकर वो बोली, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो मैं सामने ही नहीं आऊंगी, क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्या उम्र भर मैं सबके ऊपर बोझ बन रहूंगी। इतना कहकर वो रो पड़ी। आरोही सोई हुई थी इसीलिए वो धीरे धीरे रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, बस ये एक महीना निकल जाए फिर मैं वापस चली जाऊंगी, इसके बाद कभी यहाँ आने का नहीं सोचूंगी। निक इंस्टीट्यूट में आया और फिर उसके कमरे की तरफ भागा, मगर कमरे की ओर जाते जाते वो थोड़ी दूर पर ही रुक गया। उसने मन में कहा, मैं किस मुंह से जा रहा हूँ उसके पास, मुझे नहीं लगता मेरा जाना ठीक रहेगा, अगर वो मेरी किसी बात से नाराज हुई है तो सुबह होते ही सब भूल जाएगी, फिर मैं सुबह उसे एली के बारे में बता दूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। अगली सुबह निक बाहर ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था। प्रियल बाहर आई और एक पोल के पीछे से निक को देखने लगी। निक का ध्यान अचानक से उसके ऊपर गया तो वो छुप गई। निक ने बास्केटबॉल फेंकी और पोल की तरफ देखने लगा। प्रियल पहले तो वहां छुपी रही और फिर वहां से निकल गई। निक वहां आया तो उसे कोई नहीं दिखा। निक बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने अभी प्रियल को देखा। वहीं प्रियल दूर जाने के बाद एक गैलरी में चलते हुए बोली, अब तो कुछ भी हो जाए सामने ही नहीं आऊंगी। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, नीली आंखों वाला हीरो नहीं, नीली आंखों वाला विलन है ये। वहीं निक भागते हुए बॉल बास्केट की तरफ गया और उसे फेंकते हुए बोला, प्रियल को बास्केटबॉल खेलना आती होगी क्या? आती होगी, मैंने एक बार उसे खेलते हुए देखा था। तू भी ना निक, वो खुद बास्केट जैसी है, बास्केटबॉल तो खेलनी आती ही होगी। जबकि प्रियल ने गैलरी में चलते हुए कहा, और वो अक्कड़ू बॉल के जैसा, बोल के जैसा है वो। मन तो कर रहा है उसे टपका टपका के इतनी जोर से बास्केट में फेंकूं कि सारी हड्डियां टूट जाएं। निक ने अचानक अपने चेहरे पर आश्चर्यजनक भाव बनाए, कहीं गुस्सा तो नहीं? प्रियल के मुंह से निकला, गुस्सा? ये तो बहुत छोटा शब्द है, मेरे मन में तो तांडव मच रहा है, जी कर रहा है सब तोड़ फोड़ दूं। गैलरी में वो डस्टबिन के पास से निकली जहां उसने ये कहते कहते अपनी लात जोर से डस्टबिन पर मार दी। निक ने कहा, गुस्सा है तो मैं मना लूंगा उसे। प्रियल बोली, मान ही ना जाऊं मैं अब उस नीली आंखों वाले अक्कड़ू पागल से।